श्रीमद्भागवतम की जय। श्री गोकुल धाम की जय। विदाय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायण नमस्कृत्य
नारायण नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंध चौदहवां अध्याय राजा वेन की कथा श्लोक संख्या 32। न कभी नहीं अयम यह व्यक्ति अर्हति पात्र है असत असत वृत्त अपवित्र कार्यों से पूर्ण नरदेव सांसारिक राजा का या देव का वर आसनम श्रेष्ठ सिंहासन यह जो
अधियज्ञपतिम
समस्त यज्ञों का स्वामी
विष्णु भगवान विष्णु को
विनिंदति
अपमान करता है
अनपत्रपः
निर्लज्ज।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए सर्वथा अयोग्य है। यह इतना निर्लज्ज है कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का दुस्साहस किया है। तात्पर्य, किसी को भगवान विष्णु अथवा उनके भक्तों के प्रति अपमान या निंदा को कभी सहन नहीं करना चाहिए। भक्त सामान्यतः भद्र एवं विनम्र होता है और किसी से झगड़ा करने से कतराता है, न ही वह किसी से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त जब ये देखता है कि भगवान विष्णु या उनके भक्तों का अपमान हो रहा है तो वह आग बबूला हो जाता है। यह भक्त का कर्तव्य है। यद्यपि भक्त विनम्रता एवं भद्रता बनाए रखता है, किंतु यह सबसे बड़ा दोष है यदि भगवान या उनके भक्त के अपमान होने पर वह शांत रहता है। अनुवाद को दोहराइए। ऋषियों ने आगे कहा, यह अपवित्र
दंभी व्यक्ति सिंहासन पर बैठने के लिए
सर्वथा अयोग्य है यह इतना निर्लज्ज है
कि इसने भगवान विष्णु का भी अपमान करने का
दुस्साहस किया है ओम ज्ञानतिमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नागने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण ज्ञानेश्वर कसाय के कहे तुझे ना विसरल भी नामदेव। अच्छा अच्छा यहाँ जैसे हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, हो ही नहीं सकता। चाहे कोई नास्तिक हो आस्तिक हो, कोई नौसुखिया भक्त हो शुद्ध भक्त हो, ये भौतिक सृष्टि में रहने वाला कोई शुद्ध भक्त हो या गोलोक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में रहने वाला भक्त हो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पे भौतिक जगत में भगवान को भूलकर जो जीव जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं, वो भगवान की महामाया शक्ति के अधीन है। और जो शुद्ध जीव आध्यात्मिक जगत में निवास करते हैं, वो भगवान के योग माया शक्ति के अधीन है। दोनों शक्तियां एक ही है, भगवान की शक्ति ही है, परंतु उनका प्रभाव अलग अलग होता है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जैसे बिजली का परिवर्तन गर्मी में भी हो सकता है और ठंडी में भी हो सकता है, यदि किसी ऐसे कोई यंत्र में हम बिजली को भेजें जिससे वहाँ गर्मी उत्पन्न हो सकती है, तो वो यंत्र के द्वारा गर्मी होगी। वही बिजली अगर ठंड उत्पन्न करने वाले यंत्र में भेज दें तो ठंडी उत्पन्न होगी। बिजली वही है और बिजली ना तो गर्म है ना ठंडा है, परंतु जैसे पात्र है जैसे यंत्र है उस प्रकार से बिजली का असर या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान की शक्ति एक ही है जिसको माया शक्ति कहते हैं, परंतु अलग अलग पात्रता के अनुसार वो शक्ति भिन्न भिन्न रूप से लोगों के ऊपर प्रभाव करती है। जो जीव भगवान को भूल चुके हैं, भगवान को के विरोध में है, भगवान को नकारते हैं, तो उन लोगों के लिए भगवान महामाया शक्ति का की व्यवस्था करते हैं। और यहाँ पे जो जीव है भगवान को भूलकर, भगवान को गाली देकर, भगवान से भिन्न होके अलग होके भोग करने के प्रयास करने में वो बहुत दुखों को झेलते हैं। जन्म जन्मांतर उनको दुख झेलना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान को नकारता है उसके लिए केवल दुख ही दुख है। तो जो भगवान को नहीं मानता है ऐसे व्यक्ति को असुर बोलते हैं, और जो भगवान को मानते हैं उनको सुर बोलते हैं। विष्णु भक्ति सुर आदव, तो विष्णु जो सुर कौन है वो विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त होते हैं। तो चाहे कोई कृष्ण भक्त भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे, वही भगवान की माया शक्ति उसके ऊपर ऐसे प्रभाव करती है कि उस भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ते रहता है, वो भगवान के और निकट आते रहता है। परंतु महामाया के प्रभाव से व्यक्ति या जीव भगवान से दूर होते जाता है। तो ये है प्रभाव माया शक्ति का अलग अलग पात्रता के अनुसार। भगवद गीता यहाँ किसी के पास है क्या अभी इस समय है?
हाँ,
तो 16 अध्याय खोलो और असुरी वृत्ति का जो वर्णन श्री कृष्ण ने किया है उनके श्लोक पढ़ो और उनका उनकी गति क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ो। हाँ,
दम चौथा श्लोक 16 देखा। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च।
थोड़ा जोर से करोगे?
दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरिम। इंग्लिश में है
तो हिंदी में अनुवाद करो, ऐसे अभ्यास हो जाएगा करने के लिए।
दम्भ प्राइड अहंकार,
नहीं अनुवाद सीधा अनुवाद ही करो।
अरोगंस,
कौन करेंगे? अच्छा करोगे? इधर आगे इधर उधर बैठ के करो ऊपर, ताकि सब लोग सुन सके, फिर अनुवाद के बाद वापस थोड़ा जोर से ताकि सब लोग अनुवाद सुन सके।
दम्भो दर्पो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च आज्ञं चाभिजातस्य पार्थ संपदिं संपदम आसुरिं। दम्भ
नहीं, केवल अनुवाद को ट्रांसलेट, अनुवाद को बोल हिंदी में
कुछ शब्द
हिंदी में
लिख लिया।
कुछ शब्द बहुत
क्यों अभ्यास होना चाहिए करने के लिए, फटाफट फटाफट फट होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते अनुवाद उसी समय होना चाहिए।
दम्भ दर्प अभिमान क्रोध और कटु वचन और अज्ञान, ये चीज़ें ये सब जो गुण हैं ये आसुरी गुण माने जाते हैं, ऐसे भगवान कह रहे पार्थ को।
तो भगवद गीता के ये 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। एक है दैवी, जो दिव्य व्यक्ति है, दैवी संपदा से युक्त, नहीं बैठो बैठो अभी और भी करना है, दैवी संपदा से युक्त, दैवी गुणों से युक्त जो व्यक्ति है, कुछ कुछ दैवी गुणों से जो युक्त है ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं। और साथ साथ जो इसके विपरीत जो असुरी गुणों से संपन्न है ऐसे व्यक्ति का भी वर्णन करते हैं। तो इस दुनिया में विभिन्न प्रकार के गुणों को हम देखते हैं, तो कौन सा गुण असुरी है कौन सा गुण दैवी है वो हमको समझ लेना चाहिए। ऐसे बताया जाता है, आप सबने सुना होगा कि सत्ययुग में देव और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे, फिर त्रेता युग में देव और असुर एक ही लोक में रहने लगे परंतु अलग अलग देशों में, जैसे कि श्री राम यहाँ पर रहते थे और रावण लंका में रहता था। फिर द्वापर युग में देव और असुर एक ही देश में रहते थे परंतु अलग अलग शहर में, जैसे पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे, कौरव हस्तिनापुर में रहते थे। परंतु कलयुग में क्या होता है, देव और असुर कहाँ निवास करते हैं? हमारे ही हृदय में निवास करते हैं। हर एक व्यक्ति के हृदय में है। किसी के अंदर दैवी गुण ज्यादा असुर गुण कम, किसी के अंदर असुर गुण ज्यादा दैवी गुण कम, तो सबके अंदर ये दैवी गुण भी है असुरी गुण भी है। तो हमको क्या करना चाहिए? ये दैवी गुणों को हृष्ट पुष्ट करना चाहिए, दैवी गुणों को बढ़ाना चाहिए, और असुरी गुणों को क्या करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए। तो असुरी गुणों को कैसे कमजोर कर सकते हैं? दैवी गुणों को बढ़ा के आध्यात्मिक भक्तिमय अभ्यास आदि करके अच्छे संग में रह के, जैसा संग वैसा रंग। यदि हम लोग गलत लोगों के संग में रहेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे भी गुण ऐसे ही हो जाएंगे। हम अच्छे लोगों के संग में रहेंगे तो हमारे भी वैसे ही गुण हो जाएंगे। तो हमको जानना चाहिए कि असुरी गुण कौन से हैं और दैवी गुण कौन से हैं। तो अभी असुरी गुण कौन से हैं ये जरा पढ़ना।
हे पार्थ पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धायासुरी मता माशुचः संपदं दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और असुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।
देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कृष्ण ने बताई है। वो क्या है कि जो दैवी गुणों को बढ़ाता है अपने जीवन में, उसको क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। और जो असुरी गुणों से जिसकी वृद्धि करता है उसकी क्या गति होती है? बंधन हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाता है। इसलिए हमें दैवी गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थमेशुनु। हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो।
तो इस संसार में कितने प्रकार के लोग होते हैं?
दो
प्रकार। कौन से दो? असुर और
दैवी।
तो दैवी गुणों का वर्णन पहले कर चुके हैं श्री कृष्ण, लेकिन अभी असुरी गुणों का ज्यादा वर्णन करेंगे।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा, न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो असुरी होते हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है।
तो असुरी गुणों का लक्षण क्या है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उनको नहीं पता। उल्टा सोचते हैं, जो नहीं करना चाहिए उसको करना चाहिए समझते हैं, और जो करना चाहिए उसको नहीं करना चाहिए ऐसे समझते हैं। तो उनको विवेक बुद्धि नहीं रहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना सत्यता रहती है, ना उनमें कोई सभ्यता रहती है। तबीयत खराब, खोखला चले, कभी फसल ठीक ठाक है ना, बाकी कुछ नहीं ना।
सर्दी और खांसी,
सर्दी खांसी, ठीक है। कोई काढ़ा वाड़ा ले रहे हो?
दो दिन कंटिन्यूस हेवी से हो गया, तो इसके कारण वो थोड़ा
काढ़ा काढ़ा कोई बना के दे रहे हैं?
हाँ,
किचन से दे रहे हो ना?
हाँ,
काढ़ा बना के गरम गरम पाया ना, थोड़ा गरम थे पाया। हाँ ठीक है। हाँ फिर
सत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यताम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है।
तो ये उनका इनकी विचारधारा है, क्या है कि ये संसार का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल भोग करो बस, यही एक संसार का उद्देश्य। जो जितना भोग करेगा मजा करेगा वही बस जीवन है। कौन भगवान, भगवान कौन है? कोई भगवान नहीं है। अनीश्वरम जगत आहुर अनीश्वरम, अनीश्वरम मतलब कोई ईश्वरीय भगवान है ही नहीं, उनका कहना ऐसे है। ये असुरी वृत्ति है, काय देव कुठे, काय देव वेव नाही इकडे, काय करायचं, फक्त भोग करायचं, जीवन जगायचं कशासाठी, भोग करायचा जगायचं, ये असुरी मानसिकता है। कोई भगवान नहीं। चार्वाक मुनि ने क्या कहा, कोई बताएंगे श्लोक?
नम कृत्वा घृतं तुभे, नम कृत्वा घृतं तुभे, यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्,
यावत् जीवेत्,
यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्।
किं पुनरागमनो भवेत्। तो एक नास्तिक व्यक्ति थे बहुत साल पहले, बहुत पुराने जमाने में, तो उन्होंने क्या कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तुम्हारे पास यदि पैसे नहीं है तो ऋण ले लो, चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अच्छा धन कमा के घी का बनाया हुआ भोजन खाओ, खूब भोग करो, शुद्ध तुपासा जीवन घ्या। हाँ, पैसे नसेल तरी हरकत नाही, चोरी करा, उधार घ्या, काही करा, पण श्रीमंत व्हा आणि खूप भोग करा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, जोपर्यंत शरीर आहे खूप भोग करा। भस्मीभूतस्य देहस्य, ज्यावेळी शरीराचा विनाश होणार मृत्यूच्या वेळी, जब मृत्यु के समय शरीर का नाश होगा, किम पुनरागमनो भवेत, उस समय किसको पता है मृत्यु के बाद क्या होना है, कुछ भी नहीं होना है। तो ना वो आत्मा में विश्वास करते हैं, ना भगवान में विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नास्तिक बोलते हैं। तो केवल भगवान में विश्वास करना और आत्मा में विश्वास नहीं करना, ये भी पूर्णता नहीं है। केवल आत्मा में विश्वास करना और भगवान में नहीं करना, ये भी अपूर्ण है। तो यह असुरी वृत्ति।
एतां दृष्टिम् अवस्तभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवत्य युगकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
एताम दृष्टि नवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः। तो एताम दृष्टि, इस तरह की दृष्टि, इस तरह की दृष्टि कि भगवान ही नहीं है, ये संसार भोग के लिए ही है, इस प्रकार की मानसिकता, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्पबुद्धयः, ये लोग कम बुद्धि वाले हैं और क्या करते हैं, जगत अहिताय उग्र कर्माणः, ऐसे गलत काम करते हैं जिससे सब जगह नुकसान होता है, जगत का अहित होता है। या फिर आगे
काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानं मदान्विताः मोहाद्रहित्वा सग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं।
तो ऐसे लोग बहुत घमंडी होते हैं, मैं सगा सर्वस्व है, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, और काम के अधीन होकर वो सोचते हैं बस यही सही है। इस तरह से वो अपवित्र व्रतों का धारण करते हैं, वो भी व्रत लेते हैं, कैसे व्रत लेते हैं वो भी आने वाले श्लोकों में देखेंगे, किस तरह की उनकी दृढ़ता होती है। आगे
चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम पाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहंते काम भोगार्थं अन्यायेनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं।
हाँ, तो वो क्या सोचता है असुरी वृत्ति का आदमी, कि भोग करना, संसार में सुख पाने की कोशिश करना इंद्रिय तृप्ति के द्वारा, यही सब कुछ है और इसके लिए कुछ भी करना हो चलेगा। तो इसलिए कोई अवैध ढंग से पैसा कमाना हो, कुछ भी करना हो, वही चाहिए। अभी आजकल हम क्या देख रहे हैं, हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार है कि नहीं, सबको पता है ना भ्रष्टाचार होता है, क्यों लोग ऐसा घूस वूस लेते हैं, उनको लगता है जितना हो सके अवैध ढंग से हो, कैसे भी हो खूब पैसे कमाओ, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, खूब भोग करने की सुविधा सामग्री हमको चाहिए, इससे हम यशस्वी हो जाएंगे। ये सब आसुरी वृत्ति क्या सोचते हैं, क्योंकि भोग करना ही जीवन का उद्देश्य है, यही सफलता का मापदंड है, इसलिए खूब कमाओ, घूस लो, कुछ भी करो, चोरी करो, ये सब आसुरी वृत्ति। और दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में जो कि पुण्य भूमि है, बड़े बड़े संतों की भक्तों की भूमि है, जहाँ पर भगवान के कितने अवतार प्रकट हुए, जहाँ पे कितने सारे धाम और तीर्थ स्थान हैं, पवित्र नदियाँ हैं, पवित्र वन आदि हैं, जहाँ पे इतनी प्राचीन भक्ति की संस्कृति है, जहाँ पे पुराण उपनिषद भगवद गीता भागवत जैसे ग्रंथ है, वहाँ पे आजकल लोग ये सारे आध्यात्मिक संस्कृति को भूलकर क्या कर रहे हैं, मला पैसे पाहिजे, मला भोग करायचा आहे, ये उनकी वृत्ति होती है। ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का। प्रभुपाद कहते हैं कि भारतवर्ष का जिम्मेदारी है कि वो विश्व गुरु बने, सारे दुनिया के लिए गुरु बने, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करे, परंतु भारत के निवासी जो है वो अपने ही संस्कृति को भूल गए हैं और ये भोग और पैसे के पीछे पीछे भागते हैं, असुरी बन गए हैं सब लोग, और असुर वृत्ति का पालन करने से क्या होता है, चिंताएं बढ़ती हैं, चिंता है। जितना हम भोग के लिए सुविधा बनाएंगे, योजना बनाएंगे, व्यवस्था करेंगे, वैसे वैसे कठिनाई आएगी, चिंताएं बढ़ेंगी। इसलिए भारत में अन्य देशों से कितना ज्यादा कष्ट, जिनके ऊपर अधिक जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, उनको कर्तव्य है कि वो पालन करे, नहीं तो कष्ट ज्यादा उनको मिलता है। जब छोटा बच्चा जो कुछ गलत काम करता है तो पुलिस उसको पकड़ती नहीं है, लेकिन बड़ा आदमी वही काम करेगा तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी, उसकी बुद्धि होती है, समझदार होना चाहिए उसको, और फिर भी वो गलत काम करता है तो उसको दंड मिलेगा। छोटे बच्चे को पता नहीं होता है, इसलिए उसको माफ कर देते हैं। एक बच्चा, छोटा बच्चा है, माँ के गोदी में, माँ को थप्पड़ मारता है, तो माँ क्या बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाएगी? नहीं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 20-25 साल का हो जाता है, फिर माँ को थप्पड़ मारता है, तब बहुत गहरा विषय बन जाता है, तब बहुत सब गंभीर बात हो जाती है, उसको जेल के अंदर भी डालते हैं। तो उसी तरह से भारतवर्ष के लोग जब असुर बन जाते हैं तो उनको ज्यादा दंड मिलता है प्रकृति के द्वारा, क्योंकि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि बचपन से ही वो सब गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, राम कृष्ण ये सब सुनते आए हैं, और फिर भी ये संस्कृति को छोड़कर वो असुर बनने जा रहे हैं, इसलिए भगवान के द्वारा उनको दंड ज्यादा मिलता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं, किसी न किसी तरह से कमाओ। आगे
इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोव्रतम इदमस्ति इदम इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असो मया हतः शत्रु शत्रुर्हनिष्येतापरानपि ईश्वरोऽहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि भविष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा, वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं।
तो देखो कैसे उसकी विचारधारा होती है असुरी वृत्ति की। अयम अद्य मया लब्धम, कि आज मेरे पास इतना है, आगे चल के मैं इतना और प्राप्त करूंगा। ईश्वरो हम, मैं ही भगवान हूं, जैसे वेन बोल रहे हैं ना, अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, बलवान हूं, मैं सुखी हूं और मैं खूब कमाऊंगा, खूब भोग करूंगा और फिर सबको मैं दान दूंगा, ये लो तुम, ये लो। फिर सब हमारे सामने आके नमस्कार करेंगे। फिर हमको थोड़ा अच्छा लगे, हमने सबका मदद किया, हमें दान दिया, हम कितने अच्छे आदमी हैं, पुण्यवान है। अहंकार से ग्रस्त कौन भगवान क्या कुछ नहीं, हम ही भगवान ईश्वरो हम, ये असुर वृत्ति है। बिल्कुल वेन के लिए उपयुक्त है कि नहीं? ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा है हर एक लक्षण महाराज वेन को लगता है कि नहीं? हाँ, फिर अभी इसका परिणाम क्या होगा उनके लिए ये पढ़ते हैं, जो असुर वृत्ति होते हैं लोग, आगे चल के होता क्या है उनका?
अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरकेशु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं।
तो उनकी गति कहाँ है? नरक। चिंता ग्रस्त होके अंततः नरक की ओर जाते हैं। और
आत्मा संभाविता स्तब्धा धनामाना मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेते दम्भेन अविधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं।
सबको दिखाने के लिए कि हम कितने धार्मिक हैं, कभी कभी कोई धार्मिक अनुष्ठान भी मनाएंगे, सबको केवल एक दिखावा। परंतु उनको ये पता नहीं कि धर्म का सार क्या है, कि भगवान के भक्तों को और भगवान का शरण जाना, ये उनको पता नहीं। केवल अहंकार से ग्रस्त वो अपना जीवन बिताते हैं।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तो विहसूयका। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है।
तो ऐसे जो मानसिकता होती है वो कहाँ तक पहुँचती है? वो किसकी निंदा करता है?
भगवान
की निंदा। जब ये अहंकार बढ़ते बढ़ते बढ़ते, भोग और अहंकार की भावना जब बढ़ती रहती है, अंत तक कहाँ तक पहुँचेंगे?
भगवान
की निंदा करने तक पहुँचेंगे। ठीक ऐसे ही हुआ कि नहीं महाराज वेन के साथ? फिर
तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रम अशुभान् आसुरिष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ।
तो इनकी गति क्या होती है? पुनर्जन्म क्या होता है उनके लिए? बार बार असुरी योनियों में उनको जन्म लेना पड़ता है, कभी नरक में तो कभी पशु योनि में, कभी कीड़े की योनि में, कभी जानवर के शरीर में, ऐसे उनको बार बार अटक के जाना पड़ता है ऐसे भौतिक जगत में।
हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं।
तो ऐसे बारंबार उनको क्या करना पड़ता है, असुर योनि में जन्म लेना पड़ता है और नीचे 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 वो चले जाते हैं, नीच 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 योनियों में जन्म लेना पड़ता है उनको, ये उनकी गति होती है। तो असुर वृत्ति होने से, असुरी वृत्ति मतलब क्या और असुर वृत्ति होने से परिणाम क्या, ये दोनों चीजें 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। तो बराबर वेन के चरित्र को और उसके व्यवहार को, मानसिकता को ये वर्णित करता है। ठीक है, हाँ धन्यवाद। लास्ट ठीक, एक
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशन नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्वयं त्यजेत्। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनमें इनसे आत्मा का पतन होता है।
कौन से तीन नरक के द्वार हैं?
काम
क्रोध लोभ। तो इनसे बच के रहना चाहिए ताकि नरक में हम नहीं जाएं। तो धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ महाराज वेन एक आदर्श उदाहरण है किसके,
आसुरी
वृत्ति के। किसी को बढ़िया असुर बनना है एकदम, तो महाराज वेन का चरित्र का पढ़ना चाहिए। दुष्ट से दुष्ट कैसे बनना चाहिए किसी को यदि सीखना है तो पढ़ो महाराज वेन का चरित्र। और जिसको दुष्ट होने से बचना है उसको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि महाराज वेन की मानसिकता भी कभी कभी अपने अंदर भी दिखाई पड़ती है। अरे ये अहंकार आ गया, ये भोग कामना आ गया, या फिर वो ईर्ष्या आ गई, हम सोच सकते हैं कि अरे वेन आ गया वेन बैठो तो हमारे दिव्य प्रवृत्ति से अंदर हमारे जो वेन आते रहता है उसको दबा देना चाहिए। बिन बुलाए ऐसे मेहमान आता है वो। चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब ऐसे मेहमान आते हैं घर में जिनको आप नहीं चाहते हो, उनको क्या करना चाहिए, भोजन मत दे दो। तो वो जाएंगे ना, दोसा कितने दिन तक रहेंगे, तो भोजन नहीं मिलेगा तो छोड़ के जाएंगे। उसी तरह से ये जो असुरी गुण है हमारे अंदर, उनको खिलाओ नहीं, भूखे मर जाएंगे, वो चले जाएंगे। जैसे हम खिलाते रहेंगे तो और वो हृष्ट पुष्ट होते रहेंगे। तो यहाँ पर महाराज वेन के असुरी गुणों को देखकर और खास करके जब वो भगवान की निंदा करता है तो सारे ब्राह्मण ऋषि मुनिगण बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि अभी बस हो गया, अभी जब तक वो इधर उधर ऐसे बातें कर रहा था हम सहन कर सकते थे, लेकिन अभी भगवान की भी निंदा करता है ये, अपने आप को ही भगवान घोषित कर रहा है कि मैं ही भगवान हूँ। तो ऐसे ये सब घोर अंधकार है। मैंने आपको बताया होगा एक बार कि एक कल्कि भगवान बोल के झूठा कल्कि अवतार था, बताया आपको ये, भारत में अभी भी है वो, चाहे जेल की चक्कर भी काट के आया है वो। उसने घोषित किया कि मैं कल्कि का अवतार हूँ, कल्कि अवतार। कल्कि अवतार कौन है?
श्री कृष्ण,
भगवान श्री कृष्ण के
दसवें अवतार, कलयुग के अवतार,
कलयुग के अवतार, जो कि कलयुग के
अंत में
आने वाले हैं। तो कलयुग में अभी कितने साल बचे हैं? 4,27,000 साल लगभग बचे हैं। तो कल्कि भगवान को आने के लिए अभी 4,00,000 साल बाकी है। परंतु एक कोई आदमी था, उसने घोषणा किया कि मैं कल्कि अवतार हूँ। तो हमारे संस्था के एक सन्यासी थे, वो भी उस समय कुंभ मेला में थे प्रयाग में, और ये आदमी उधर आया था। तो ये भी सब जगह बोल रहा था कि मैं कल्कि अवतार हूँ। फिर हमारे ये जो संस्था के भक्त थे वो उनके पास गए। सभी लोग मासूम हैं बेचारे, अज्ञानी लोग, भगवान भगवान कह के उसके चरण में पड़ रहे, उसके पैरों में पड़ रहे थे, और वो आशीर्वाद दे रहा था सबको। तो फिर हमारे सन्यासी ने जाके उनसे पूछा कि आप कहते हो कि आप कल्कि अवतार हो, लेकिन श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कल्कि के पिता का नाम है विष्णु यश, आपके पिता का नाम विष्णु यश है क्या? नहीं, भागवत में बताया गया है कि कल्कि अवतार का जन्म शंभल ग्राम में होगा। आपका जन्म शंभल ग्राम में हुआ था क्या? नहीं। फिर भागवत में यह भी बताया गया है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएंगे, 4,00,000 साल बाद में आएंगे। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? तो उस व्यक्ति ने क्या उत्तर दिया? लोगों का दुख मुझे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं जल्दी आया। देखो ऐसे बदमाश लोग रहते हैं। इस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, ये असुर वृत्ति है। मैं भगवान, एक बार मैं तिरुपति जा रहा था तो मद्रास चेन्नई से एक भक्त मुझे गाड़ी में ले जा रहे थे। तो जाते जाते रास्ते में एक बहुत बड़ा मंदिर आश्रम उस टाइप का दिखाई पड़ा। तो भक्त ने हमको बताया, ये है वो कल्कि वाले भगवान अवतार है ना, उनका आश्रम है। तो उनका वो दक्षिण भारत में काफी लोग उनके पीछे है, अनुयायी उनके है। तो उनका आश्रम था उधर, कल्कि अवतार। ऐसे भारत के का दुर्भाग्य है, जगह जगह ऐसे झूठे अवतार मिलते हैं। थोड़ा कुछ किसी का कुछ शक्ति कुछ मिल गई, वो अपने आप को भगवान घोषित करता है। और ऐसे भी अज्ञानी मासूम मूर्ख लोग होते हैं जो उनके पीछे पीछे जाते हैं, ये भगवान करके। प्रभुपाद जी कितने इस बारे में कठोर थे कि मुझे कभी भी भगवान कह के नहीं बुलाना, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। जब प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था की स्थापना की तो थोड़े सालों बाद उनके थोड़े शिष्यों ने घोषणा करना शुरू कर दिया कि प्रभुपाद भगवान है। तो प्रभुपाद को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उन शिष्यों को संस्था से निकाल दिया। बाकी संस्थाओं में क्या होता, यदि कोई वो ऐसे उनके आचार्य को भगवान बनाते हो, बोलता बहुत अच्छा भाई, शाबाश। ऐसे ही सब जगह बताते रहना, है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे चैतन्य महाप्रभु के सामने भी आके यदि कोई बोलता कि आप भगवान विष्णु हैं, तो महाप्रभु अपने कान बंद करते थे। विष्णु 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 ऐसा मत बोलो, इतना बड़ा अपराध मत करो। हालांकि वो स्वयं भगवान थे, फिर भी एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे, इसलिए सबके सामने उनको साबित करना था कि उचित व्यवहार क्या होना चाहिए। अरे विष्णु 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 हमको भगवान मत बोलना, जीव को भगवान बोलना ये बहुत बड़ा अपराध है। दक्षिण भारत में एक और साधु हुआ करते थे, अभी नहीं है, लेकिन उनका नाम ही था भगवान और उसके पीछे उनका नाम भगवान कुछ भी जो भी उनका नाम था। तो जब प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उनसे जाके पूछा कि आप अपने आप को भगवान बोलते हो, आप कैसे बोल सकते हो, क्या प्रमाण है आपके पास, शास्त्रों में आपका नाम कहाँ लिखा है? जब तक भविष्यवाणी शास्त्रों में नहीं होती कोई भी भगवान अपने आप को नहीं कह सकता है। तो वो कहने लगा, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ? हाँ, आपके शिष्य लोग आपको बुलाते रहते हैं, आपको हे भगवान करके बोलते हैं। तो बोलता, हाँ मैं तो नहीं कह रहा हूं ना। तो शिष्यों ने कहा, प्रभुपाद जी के पास ये लेकर गए कि ये ऐसे बोलता है कि मैं तो नहीं कह रहा हूं कि मैं भगवान हूं। तो प्रभुपाद जी को गुस्सा आया, जब तुम्हारे शिष्य तुमको भगवान करके संबोधित करते हैं उस समय मना क्यों नहीं करते? मौनम सम्मति लक्षणम, तुमको कोई भगवान भगवान कह के पुकारे और तुम चुप बैठो तो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम मानते हो कि मैं भगवान हूं? यदि तुम कहना चाहते हो कि तुम नहीं हो तो उस समय उन लोगों को रोकना चाहिए था कि मैं भगवान नहीं हूं, जैसे प्रभुपाद जी ने किया था। उनके शिष्यों ने जब कहा कि आप भगवान हैं, प्रभुपाद को बहुत गुस्सा आया, उनको रोक दिया उन्होंने। तो ऐसे ही दूसरे साधु जो है, जब उनको कोई भगवान कह के बोलता है भले वो स्वयं ना बोले, उनको रोकते नहीं है वो। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान बनने की जो एक वृत्ति है ये माया का अंतिम जाल है, सबसे बड़ा और कठिन जाल, मैं भगवान हूं। इस तरह से कितने दुर्भाग्य की बात है कि तरह तरह के गलत धारणाएं फैली हुई हैं, भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज में। इसलिए प्रभुपाद जी के उपदेशों को, ग्रंथों को हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, हर चीज का स्पष्टीकरण हो जाएगा। जब मैं पहली बार भक्त बना तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ के एक बात मुझे यही लगी, प्रभुपाद जी ने सब कुछ कितना स्पष्ट किया है, कोई इधर उधर की बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ये भी है वो भी है, ऐसे नहीं, ऐसे ही है। और इतने साधारण भाषा में उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। इसलिए सूरज जैसे दिन के समय सूरज की किरणों के द्वारा कैसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है, ऐसे हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य और उनके ग्रंथ और प्रवचन। अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता, केवल एक झलक इधर उधर कुछ दिखाई पड़ता है, परंतु जब सूर्योदय हो जाता है सब कुछ स्पष्ट दिखता है। इसलिए हमें प्रभुपाद जैसे आचार्यों के वाणी को बार बार सुनना और पढ़ना चाहिए, फिर हमें पता चलेगा कि हम कौन है, भगवान कौन है, जीवन का ध्येय क्या है, धर्म क्या है, क्या नहीं है इत्यादि। तो वेन के शिष्य दुर्भाग्यवश बहुत सारे हैं आजकल समाज में, तो उनसे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी के अनुयायी बनना चाहिए। हरे कृष्णा।
महाराज, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत बार रिविलेशन, रियलाइजेशन और इंस्पिरेशन, ये तीन वर्ड्स का यूज करते हैं, तो ये तीनों वर्ड्स समानार्थी है या इनका अलग अलग जगह पे मीनिंग है?
रिविलेशन मतलब जब कोई चीज को का प्राकृति किया जाता है उसको रेवेलेशन, उसको खुलासा करना, तो अवश्य जितना भी दिव्य ज्ञान है वो प्राकृत्य से ही होता है। जब तक भगवान इसका प्राकृत्य नहीं करेंगे, किसी को भगवान के बारे में ज्ञान नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान स्वयं आते हैं, भगवान अपने शास्त्रों को भेजते हैं, अपने साधु संतों को भेजते हैं। और दूसरा है कौन सा?
रियलाइजेशन,
साक्षात्कार। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयाति ते। जब हम इस प्रकट ज्ञान को, विद्या का पालन करते हैं, तो अंदर से भगवान श्री कृष्ण को साक्षात्कार देते हैं कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा प्रेरणा। प्रेरणा क्या है? एक स्फूर्ति, एक उत्साह जो हमें भक्तों के संग में मिलता है और भगवान के हरि नाम से और ग्रंथों के संग करने से मिलता है, आगे बढ़ने के लिए उत्साह। तो ये तीनों चीजें हमारे भक्ति के जीवन में आवश्यक है। हाँ, तो उद्धव हरि प्रभु।
जब जीव सोचता है कि मैं भगवान हूँ, तो ये माया का अंतिम
जाल है।
जाल है। तो हमको भी ऐसे पालन नहीं किया जाता है कि हमको मायावाद नहीं सुनना चाहिए ऐसा करके। और हम ये भी देखते हैं कि अगर शायद इस्कॉन मूवमेंट या चेतनभाव का आंदोलन में ऐसे भक्त थे जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे भक्त थे और भक्ति का पालन किया, और लेकिन अंतिम में ऐसा कुछ माया ने ऐसा क्या करता है उस समय पे, जो कि उनका जो दास भाव है वो ट्रांजिशन हो जाता है कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि जैसे वृंदावन में प्रेम मंदिर और वो सब देखने को मिल, तो वो ऐसा बड़े बड़े भक्त रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा माया है, क्या करता है, वो कन्विंस हो जाता है वो आदमी की मैं अभी भगवान हूँ, जबकि उसको सब तब तक पता रहता है, तब तक पता रहता है कि मैं दास हूँ।
ये हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं लेंगे, परंतु जब ज़्यादा पूजा लाभ प्रतिष्ठा होती है तो अहंकार बढ़ने की संभावना बहुत होती है, बहुत खतरनाक होता है हमारे लिए। इसलिए इस तरह के पूजा लाभ प्रतिष्ठा से हमको बहुत बच के रहना चाहिए। हाँ, तो लोग हमारी वाहवाह बहुत करते हैं तो हमको लगने लगता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, फिर हमारा घमंड बढ़ जाता है। जब घमंड बढ़ता है धीरे 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 से, फिर माया तारे झपटिया धरे, फिर वो सोचने लगेगा आज नहीं तो कल, मैं भी तो भगवान। हाँ, अंतिम जाल। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। ठीक है,
महाराज, अपराध, और आपने अभी श्लोक में निंदाई शब्द का यूज किया था, और क्रिटिसिज्म, ये तीनों में भेद क्या है?
कोई भेद नहीं। भगवान की निंदा करना, महान भक्तों की निंदा करना, ये भी एक अपराध ही है। पहला अपराध क्या है? निंदा करना है कि नहीं? निंदा करना ही एक अपराध है। अपराध कई तरह के होते हैं, उनमें से सबसे पहला है निंदा करना। ये भौतिक जगत में अन्यों की बुराई करने की एक आदत हो गई है। इतनी आदत हो गई है कि वो निकल ही जाता है मुझसे। वो प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है, इसलिए इससे बहुत संभल के रहना चाहिए। हरे कृष्णा।
गलती और अपराध।
हाँ,
गलती और अपराध, इंग्लिश में मिस्टेक एंड ऑफेंस।
गलती और अपराध में अंतर क्या है? जब हम कुछ जानबूझ के करते हैं तो अपराध, गलती से कुछ हो जाता है बिना ज्ञान के, वो गलती। पाप हो सकता है। तो आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? कैसे